अध्याय 40 अध्ययन में चुनाव। शिक्षा जीवन के उत्तम कर्तव्यों को करने के लिए दैहिक, बैहिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त करने की तैयारी मात्र है। सहनशीलता की शक्ति तथा मस्तिष्क का बल और क्रियाशीलता के व्यवहार के अनुसार उन्नति व अवनति होगी। मस्तिष्क को इस प्रकार अनुशासित करना चाहिए कि सारी शक्तियां सुडौल रूप से विकसित हो जाएं। बहुत से नवयुवक पुस्तकों के इच्छुक होते हैं। वे प्रत्येक चीज जो उन्हें प्राप्त होती है उसे पढ़ने की इच्छा रखते हैं। उनका सावधान होना चाहिए कि वे क्या पढ़ते हैं अथवा क्या सुनते हैं। मुझे बताया गया है कि जो युवक अश्लील किताबें पढ़ते हैं वे अपने चरित्र बिगाड़ने के भारी खतरे में हैं। शैतान के पास नवयुवकों के मस्तिष्क को अस्थिर करने के लिए असंख्य साधन हैं। उनको एक क्षण भी असावधान नहीं रहना चाहिए। उनको अपने मस्तिष्क की चौकसी करनी चाहिए ताकि वह शत्रु के प्रलोभनों में न फंस जाए। अस्वास्थ्यकर अध्ययन का प्रभाव। शैतान जानता है कि मस्तिष्क अधिकतर उन चीजों से प्रभावित होता है जिनके द्वारा उसका पोषण होता है। वह नवजवानों को और प्रौढ़ों को कहानी, उपन्यास, अन्य साहित्यों को पढ़ने की प्रेरणा करता है। इस प्रकार के साहित्य का अध्ययन करने वाले जीवन के उत्तम कर्तव्यों को पूरा करने में सदैव अयोग्य रहे हैं। उनका जीवन वास्तविक नहीं, उनके हृदय में धर्मशास्त्र में ढूंढने की इच्छा नहीं, स्वर्गीय मन्ना द्वारा खिलाए नहीं जाते। मस्तिष्क जिसको शक्ति की आवश्यकता है वह निर्बल हो जाता है तथा उसमें मसीह के कार्य, नियोग तथा उन महान सत्यों को समझने की क्षमता नहीं रहती। वे सत्य जो मस्तिष्क की रक्षा करें, कल्पना जागृत करें और विजयी होने की सुदृढ़ भावना उत्पन्न करें, जैसा मसीह स्वयं विजयी था। यदि ऐसी असंख्य पुस्तकों का प्रकाशन बंद हो जाए तो एक महारोग दूर हो जाएगा जो लोगों के हृदय और मस्तिष्क में एक भयानक रूप ले रहा है। प्रेम संबंधी कहानियां और उत्तेजित करने वाली अश्लील कहानियां और यहां तक कि उस श्रेणी की पुस्तकें जो धार्मिक उपन्यास कहलाती हैं, जिनमें लेखक कथाओं के साथ नैतिक शिक्षा जोड़ देते हैं, पाठकों के लिए पाप है। धार्मिक विचार कहानी के रूप में लिखे जा सकते हैं, परंतु अधिकतर शैतान ही स्वर्गदूत के भेष में होता है। यही सबसे अधिक धोखा और छल का प्रमाण है। कोई भी अपने सिद्धांतों में ऐसा दृढ़ नहीं, न कोई परीक्षाओं से रहित, कि वे ऐसी कथाओं के पाठन में सुरक्षित रह सकें। उपन्यासों के पाठक ऐसी बुराई में पड़े हैं जिससे आत्मिकता, पवित्र पुस्तकों की सौंदर्यता नष्ट होती है। यह अस्वास्थ्यकर उत्तेजना काल्पनिक बिगाड़ पैदा करती, मस्तिष्क की योग्यता का हरण करती, आत्मा को प्रार्थना में दुर्बल बनाती तथा आत्मिक अभ्यास के अयोग्य ठहराती है। ईश्वर ने हमारे नवयुवकों को उत्तम योग्यताएं दी हैं, किंतु अक्सर उन्होंने इसका दुरुपयोग करके मस्तिष्क को गड़बड़ में डालकर निर्बल किया है। अतएव उन्होंने कई वर्षों से अनुग्रह व विश्वास के ज्ञान में उन्नति नहीं की। अपने बुद्धिहीन अध्ययन के चुनाव के कारण वे जो अपने प्रभु के शीघ्र आगमन की प्रतीक्षा करते और उस अद्भुत परिवर्तन की आशा में, जबकि यह विनाशी अविनाश को पहन लेगा, क्या इस अनुग्रह काल में कार्य के उच्च क्षेत्र में लिए खड़े न हो जाएं? मेरे नवजवान मित्रों, अपने व्यक्तिगत अनुभव से इन उत्तेजन कथाओं के प्रभाव का विचार कीजिए। क्या आप ऐसे पाठन के पश्चात अपनी बाइबल खोलकर दिलचस्पी से जीवन के वचनों को पढ़ सकते हैं? क्या आपको ईश्वर की पुस्तक अरुचिकर मालूम होती है? प्रेम कथाओं का आकर्षण मस्तिष्क पर अधिक है, उसके स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला तथा उस अनंत कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण गंभीर सत्यों पर आपके चित्त को केंद्रित होने को असंभव बना देता है। इस प्रकार के व्यर्थ अध्ययन का दृढ़तापूर्वक त्याग कर दीजिए। इससे आपकी आत्मिकता नहीं बढ़ेगी, किंतु इससे मस्तिष्क में ऐसी भावना उत्पन्न होगी जिससे कल्पना में बिगाड़ होगा और आप मसीह के विषय में सोचेंगे और उसके बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं पर आधारित नहीं रह सकेंगे। मस्तिष्क को प्रत्येक ऐसी बातों से अलग रखिए जिससे वह गलत रास्ते में न जा सके। ऐसी व्यर्थ कहानियों से अपने को बोझिल न कीजिए जिनसे बौद्धिक शक्ति नहीं बढ़ती। जैसा भोजन मस्तिष्क को मिलता हो, विचार उसी प्रकार के होंगे। अध्ययन जिससे आत्मा नष्ट होती है, उस साहित्य की अपार बार के साथ जो निरंतर प्रेस से प्रकाशित होता रहता है, बूढ़े और नौजवानों में शीघ्र और सरसरी पढ़ने की आदत डाल देते हैं, जिससे मस्तिष्क पारस्परिक शक्ति खो बैठता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकों और पत्रिकाओं का अधिकांश मिस्र के मेढ़कों की भांति देश के ऊपर फैल रहे हैं। ये सिर्फ मामूली निकम्मे शक्तिहीन ही नहीं है, अपितु अशुद्ध और विनाशक है। इनके प्रभाव से मस्तिष्क मतवाला हो, नष्ट तो होता ही है, साथ ही आत्मा भ्रष्ट हो, सत्यानाश हो जाती है। बालकों और नवयुवकों की शिक्षा में कहानियां और दंतकथाओं ने अधिक स्थान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार की पुस्तकें विद्यालयों और घरों में पाई जाती हैं। किस प्रकार मसीही माता पिता अपने बालकों को ऐसी पुस्तकें पढ़ने के लिए आज्ञा दे सकते हैं जो निरे झूठ से भरी हुई है, जबकि बालक इन कथाओं का मतलब अपने माता पिता से पूछते हैं जो उनकी शिक्षा के विपरीत हैं, तो इसका उत्तर है कि वे कथाएं सत्य नहीं हैं, लेकिन केवल इससे उस दुष्परिणाम का प्रभाव नहीं जाता जो इसके इस्तेमाल से होता है। इन पुस्तकों के विचार बालकों को गलत रास्ते में ले जाते हैं। वे जीवन का झूठा लक्ष्य और अस्वाभाविक तथा असत्यता के विचार उत्पन्न करती हैं। कभी भी सत्य का बिगाड़ करने वाली पुस्तकें बालकों तथा नवजवानों के हाथ में न दीजिए। हमारे बालकों को शिक्षा प्राप्ति के समय इन विचारों में न पढ़ने दें जो बाद में पाप का बीज सिद्ध हों। एक दूसरा बड़ा भय जिसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए वो ये है, हम नास्तिक लेखकों की किताबों का अध्ययन न करें। ऐसे ग्रंथ सत्य के शत्रु द्वारा प्रेरित होते हैं और कोई भी आत्मा को हानि पहुंचाए बिना इन्हें नहीं पढ़ सकता। ये सत्य है कि कुछ जो प्रभावित होते हैं अंत में स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु जितने उसके दुष्परिणाम के साथ हस्तक्षेप करते हैं अपने को शैतान की भूमि में रखते हैं, जिससे वो खूब लाभ उठाता है। जब वे उसके प्रलोभनों का स्वागत करते हैं तो उनमें समझने की बुद्धि तथा उनका विरोध करने की शक्ति नहीं रहती। अविश्वास तथा नास्तिकता आकर्षण तथा जादू की तरह मस्तिष्क पर प्रभाव डाल देते हैं। उत्तेजक कहानियों के अध्ययन में भय, हमारे बालक क्या पढ़ेंगे? ये एक गंभीर प्रश्न है जिसका गंभीर उत्तर देना आवश्यक है। मुझे ये देखकर खेद होता है कि सब्बत मानने वाले परिवारों में समय समय पर निकलने वाली पत्रिकाओं में लगातार कथाओं का कोई प्रभाव इन बच्चों और जवानों के मस्तिष्क पर नहीं पड़ता। मैंने उनकी इच्छा को देखा जो उपन्यास पढ़ने के शौकीन हो गए। उनको सत्य के विषय में सुनने का और हमारे धर्म के सिद्धांतों से परिचय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो हुआ, लेकिन सच्ची भक्ति तथा व्यावहारिक आचरण का अभाव पाया गया। तुच्छ और उत्तेजनाशील कथाओं के पाठक व्यावहारिक जीवन के कार्यों को करने में अयोग्य होते हैं, वे काल्पनिक संसार में रहते हैं। मैंने उन बालकों को देखा जिन्हें ऐसी कहानियों को पढ़ने और उसके अनुसार चलने की अनुमति मिली। चाहे देश में या विदेश में, वे सदैव ही बेचैन हैं और सामान्य विषयों के सिवाय अन्य विषयों की चर्चा में असमर्थ रहते हैं। धार्मिक विचार और धार्मिक चर्चा उनके मस्तिष्क के लिए एक विदेशी चीज थी। सनसनीखेज कहानियों की भूख उनके मस्तिष्क में बौद्धिक विकार उत्पन्न करती है, और मस्तिष्क बिना ऐसे अस्वास्थ्यकर भोजन के संतुष्ट नहीं होता। मैं ऐसे अध्ययन में पड़े व्यक्तियों को मानसिक उन्माद से कोई और यथोचित नाम नहीं दे सकती। अध्ययन में असंयम की आदत मस्तिष्क पर वही प्रभाव डालती है जो खाने पीने का असंयम शरीर पर डाल सकता है। इस वर्तमान सत्य को स्वीकार करने से पूर्व कुछ को उपन्यास अध्ययन की आदत पड़ गई थी। मंडली में सम्मिलित होने पर उन्होंने उस पर जय पाने का प्रयत्न किया। ऐसी श्रेणी के मनुष्यों के समक्ष इस प्रकार की पुस्तकें रखना जिसका उन्होंने सदैव बहिष्कार किया है, यानी पियक्कड़ के सामने शराब देना है। लगातार परीक्षाओं में गिरने के कारण उनके स्वस्थ अध्ययन की रुचि जाती रहती है। बाइबल अध्ययन की रुचि उन्हें नहीं रहती, उनकी आत्मिक शक्ति निर्बल हो जाती, पाप उन्हें कम भयंकर मालूम पड़ता। जीवन के व्यावहारिक कर्तव्यों को करने की रुचि घटती और अविश्वास योग्यता अधिक प्रकट होती। जब मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो जाता तो अशिष्ट चरित्र की पुस्तकें पढ़ना आसान है। इस प्रकार शैतान के लिए आत्मा पर पूर्ण अधिकार करने का मार्ग खुल जाता है। पुस्तकों की पुस्तक। किसी व्यक्ति का धार्मिक अनुभव का पता उन पुस्तकों द्वारा चलता है जिन्हें वह अपने आराम के समय पढ़ता है। अपने मस्तिष्क की शुद्धि तथा दृढ़ धार्मिक सिद्धांतों को मानने के लिए नौजवानों को सदैव ईश्वर की संगति उसके वचन के द्वारा करनी है। हमारे उद्धार का मार्ग मसीह के द्वारा इंगित करते हुए बाइबल हमें उच्च और उत्तम जीवन यापन में पथ प्रदर्शक है। इसमें सबसे सुंदर रचनाएं, उत्तम इतिहास और जीवनियां लिखी हुई हैं। जिनकी कल्पना उपन्यासों के पढ़ने से नहीं बिगड़ी है, वे बाइबल को सबसे मनोरंजक पुस्तक पाएंगे। बाइबल पुस्तकों की पुस्तक है। यदि आप उसके वचन से प्रेम रखते हैं, उसमें खोजते हैं जब भी अवसर मिलता है कि आप उत्तम धन की प्राप्ति कर सकें और हर एक अच्छे कार्य के लिए तैयार रहें, तो आपको निश्चय होना चाहिए कि मसीह आपको खींच रहा है। परंतु धर्मशास्त्र का अध्ययन मामूली रीति से करना, बिना मसीह की इच्छा खोजे हुए जिस पर आप चलें, तो ये बस नहीं है। ईश्वर के वचन में अगम्य धन राशि छिपी है जो प्राप्त कर सकते हैं यदि इस सत्य की खान की गहराई में उतरें। शारीरिक मनुष्य की बुद्धि सत्य को अस्वीकार करती है, परंतु परिवर्तित आत्मा अद्भुत रूप से बदलती जाती है। पापी मनुष्य के लिए जो सत्य प्रकाशित करने वाली पुस्तक पहले अनाकर्षित थी, अब उसकी आत्मा का भोजन और जीवन की शांति और आनंद बन जाती है। धार्मिकता का सूर्य इन पवित्र पृष्ठों पर प्रकाश डालता है और पवित्र आत्मा स्वयं ही उसकी आत्मा से वार्तालाप करती है। हम में से हर एक जो अध्ययन से प्रीति रखता है और इस प्रकाश में आ गया है, भविष्यवाणी के सत्य वचन पर ध्यान दें। अपनी बाइबल लीजिए और नई दिलचस्पी के साथ पुराने और नए नियम के पवित्र पृष्ठों का अध्ययन आरंभ कीजिए। जितना अधिक सतर्कता के साथ उनका अध्ययन करेंगे, उतनी ही सुंदर यह आपको प्रतीत होगी और उतना ही अधिकाधिक रुचि बढ़ेगी। इस बहुमूल्य ग्रंथ को अपने हृदय में छिपा लीजिए। यह आपके लिए सच्चा मित्र और पथ प्रदर्शक होगी।